दोस्तों, मैं दीप्ति आपको अपनी सहेली के देवर सारांश के साथ अपनी कहानी सुना रही थी। मैंने अब तक आपको बताया था कि सारांश ने मेरी योनि को चूस चूस कर मुझे विचलित कर दिया था और अब मेरी चुदाई की बारी थी। सारांश मुझे एक टक देखते हुए बिस्तर पर ही खड़ा हो गया। अपने लिंग की चोटी को सहलाते हुए पहले मेरे किनारे और फिर अपने दोनों पैर मेरी कमर के दोनों किनारों पर रखकर खड़ा हो गया। ये मेरे जीवन का सबसे कामुक क्षण था। सारांश जैसा हैंडसम युवक नग्नावस्था में मेरे ठीक ऊपर ऐसे खड़ा था मानो वो मेरा आसमान हो। उस दिशा से जब वो अपने लिंग को जड़ से ऊपर तक सहलाता तो उसके लिंग की बनावट देखकर मेरे अंदर करंट सा दौड़ने लगता। सारांश ने मेरी स्थिति भांप ली और अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर जरा सा झुका, जैसे पूरी तरह से उसने अपना बदन मुझे सौंप दिया हो। उसका कठोर लिंग अब ठीक मेरे चेहरे के ऊपर था। मैंने जब उसे हाथ में थामा तो एक झटका सा लगा, जैसे मैंने उसकी जड़ से चोटी तक सहलाया मानो वो कुछ और बड़ा हो गया हो। मैं बिस्तर पर अपने घुटनों के बल बैठी और सारांश के लिंग को अपने होठों में दबाने ही वाली थी कि उसने मेरे गालों को बड़े प्यार से पकड़ा और मेरे चेहरे को ठीक फुफकारते हुए लिंग के आगे रोक दिया। उसने मेरी विस्मय भरी आंखों में देखा और कहा, आज आपका पहला ही पाठ है दीप्ति भाभी, बाकी बाद के लिए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सारांश ने झुककर पहले मेरे होठों को चूमा, फिर मेरे गले को चूमते हुए उसके होठ मेरी ऊपरी फिर निचली पीठ को संवारने लगे। जैसे जैसे उसके होठ मेरे होठों की तरफ बढ़े, उसके दोनों हाथ मेरे स्तनों से खेलने लगे और मैं मदहोश होकर बिस्तर पर झुकती चली गई। देखते ही देखते मैं बिस्तर में पेट के बल लेट गई और वो मेरे पैरों को फैलाकर उनके बीच में बैठ गया। फिर उसने मेरे कूलों को थामकर उन्हें फैलाया और धीरे धीरे चूमने लगा। मेरे पेट की तितलियां मेरी योनि को प्रेम रस से भरने लगी। अचानक जब उसने एक बार जोर से काटकर वैसा अपने होठों में दबाया तो मेरे कूले और उछल गए। उसी पल मेरा बाया हाथ उसकी पीठ के ऊपर आ गया। एक झटके में उसने मेरी पीठ दबाई। सब इतनी अकस्मात और तेजी से हुआ कि मुझे अपना सिर सीधा करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ रहा था। सारांश मेरे जिस्म के साथ ऐसे खेल रहा था कि मेरे दिल में हिलोरे उमड़ रही थी। उस पल मुझे एक और सरप्राइज मिला। कमरे की इस दिशा में ही दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था जिसमें मैं सारांश को और खुद को देख पा रही थी। जैसे ही हमारी आंखें दर्पण में मिली तो सारांश ने अपना लिंग मेरी योनि की फांकों पर लगा दिया और धीरे धीरे उसे रगड़ने लगा। तब मुझे एहसास हुआ तो कितनी चतुराई से उसने मुझे इस पोजीशन में डाला था। मुझे बाद में पढ़ने पर पता चला कि इस पोजीशन को अंग्रेजी में लीप फ्रॉग कहते हैं, माने मेंढक उछलने की तैयारी में, जो कि डॉगी स्टाइल का एक रूप है। मैंने अपने पति के साथ एक आध बार डॉगी स्टाइल किया था लेकिन ये कभी नहीं। और सारांश ने ये स्थिति क्यों चुनी ये मुझे बहुत ही जल्द पता चल गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्स करूंगी, लेकिन पति के लिए तैयार होने के कुछ घंटों बाद मैं यहाँ थी अपनी सहेली के देवर के लिंग तले। मुझे पक्का पता था कि शोभा ने मुझे ढूंढने का प्रयत्न किया होगा। और उसे आभास भी हुआ होगा मेरे न मिलने पर कि मैं आखिर कहाँ फंसी हूँ। उनके कई राज की तरह ही अब मेरा ये राज भी उनके पास महफूज रहेगा। अब बस एक ही चीज़ चाहिए थी मुझे और वह सारांश के हाथ में थी, जिससे वह धीरे धीरे मेरे योनि द्वार पर लगड़ रहा था। एक तो पहले ही उसका लिंग इतना मोटा था, ऊपर से उसने मुझे जिस पोजीशन में बांध रखा था उससे मेरी योनि अपने सबसे कसे हुए स्वरूप में आ गई थी। शायद कोई और होता तो निर्दयता से लिंग अंदर घुसेड़ देता, लेकिन सारांश धीरे धीरे उसे रगड़ रहा था। उसका लिंग भले ही अपनी योनि में घुसपैठ कर रहा हो, उसके बाद मेरे कूलों पर मर्दन कर रहे हों, लेकिन उसकी आंखें अब भी दर्पण में मेरी आंखों से ही बात कर रही थी। उस समझ के कारण ही मैं मदहोश हो चुकी थी। मैंने उसे दर्पण में इशारा किया। थोड़ी देर के बाद सारांश आधे से ज़्यादा मेरे अंदर समा चुका था। इशारा क्या किया, बस जरा सा सिर हिलाया और वो समझ गया कि मेरे अंदर की आग अब समंदर बन चुकी है। सारांश धीमे धीमे रगड़ते हुए पहले अंदर लाया, उसके बाद बाएं हाथ से मेरी कमर पर दबाव डाला, जबकि दाएं हाथ से मेरे बालों को पकड़ा। अगले ही पल उसने मुझे बालों से अपनी ओर खींचते हुए मेरी कमर पर दबाव बनाया और लिंग की चोटी का कुछ हिस्सा अंदर छोड़कर रुक गया। फिर मेरी एक लंबी आह के साथ ही अपना पूरा लिंग मेरी योनि में सीधा डाल दिया। मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन जो मज़ा आया उसके क्या कहने। ना मुझे इस दिन की उम्मीद थी और ना ही इस सुख की, मैं तो बस पार्टी में आई थी और देखिए फिर क्या होता चला गया। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी योनि में ये कोने भी हैं जो सारांश ने खोज निकाले हैं। इशारा देने के लिए मैंने अपने कूलों को उचकाना शुरू कर दिया। मुझे और भी चाहिए था, पूरा चाहिए था। सारांश ने सांसें भरते हुए फिर मुझे दर्पण में देखा और बालों से मुझे खींचते हुए मेरे कूलों के और ऊपर आकर जो रही सही लंबाई चौड़ाई बची थी पूरी अंदर डाल दी। उसका लिंग पूरी तरह से मेरी योनि में विलीन हो चुका था। कुछ पल विराम के बाद सारांश ने अपना लिंग ऊपर नीचे करना शुरू किया। जैसे जैसे वो अंदर बाहर होता, मेरी लिंग ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती और मादक सिस्कारियां गूंजती जाती। मेरे बाल उसके हाथ में होने के कारण मैं तभी उसे दर्पण में देखती जब वह मेरा सर ऊपर खींचता। सारांश पूरे समय हम दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें कभी मेरे भाव पड़ती, कभी मेरे हवा में उछलते सतनों को और कभी कूल्हों को। सारांश जितना जोर डालता मैं उतनी जोर से दबाव देती। मैं जितना अंदर जाती वो उतना ही और घुसता। वो अचानक से रुक गया। उसके कूल्हे वृत्त के आकार में घुमाते हुए मेरी योनि में समाने लगे। मैं खुद को बहुत नया महसूस कर रही थी। जीवन में कुछ नया मिला था। शादी के बाद से मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। शादी के बाद ये पहला दिन था जब एक ही दिन में मुझे दो बार चरम सुख मिलने वाला था। सारांश ने जैसे ही मेरे बदन में हलचल को भांपा, उसने अपनी गति तेज कर दी। मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरे अंदर लावा फटने लगा और जल्द ही फटा। जब मेरा बदन आनंद में कांप रहा था, सारांश मेरे कूल्हों को कड़ाई से थामकर योनि मर्दन किए जा रहा था। जब तक मैं पूरी तरह से खाली होती, उसका लावा भी फटने लगा। जैसे ही सारांश का वीर्य निकलने लगा, उसने अपने कूल्हे पीछे खींचने की तैयारी की, लेकिन तभी मैंने अपने कूल्हे और ऊपर कर दिए और योनि को कस लिया। मैं सारांश के लिंग को अपनी योनि में ही समाये रखना चाहती थी। सारांश अचरज में ज़रूर था, लेकिन उसकी आंखों में चमक भी थी और कुछ ही क्षणों में वो फट पड़ा। उसका वीर्य सीधा मेरी योनि में गिरा, उसका बदन मेरे बदन पर। हम दोनों वैसे ही लेटे रहे और अपनी सांसें एकत्रित करते रहे। उसका लिंग अब भी मेरी योनि के अंदर था, तनाव खो दिया था उसने, लेकिन मोटा इतना ही था। वीर्य धीरे धीरे योनि से बहकर बाहर आ रहा था। मैंने महसूस किया कि सारांश अब भी मुझे दर्पण में देख रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। 10 मिनट बाद मैं दर्पण के सामने अपनी साड़ी पहन रही थी और सारांश पीछे बिस्तर पर बैठकर किसी दीवाने आशिक की तरह मुझे देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, इस रात की बात इस कमरे में ही रहनी चाहिए। वह कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने दिल पर एक क्रॉस बनाकर चाबी दूर फेंकने की एक्टिंग कर डाली। मैंने कहा, थैंक यू, वैसे ये मुस्कान किस बात की? सारांश ने जवाब दिया, मेरे मुंह से तो इस रात के बारे में एक शब्द भी नहीं निकलेगा सेक्सी टीचर भाभी, लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि ऐसी रात फिर नहीं आएगी? मैंने जवाब दिया, प्रेम क्रिया, हाँ मुझे भी ये बात पूछनी थी कि कौन से पार्ट होते हैं? दो और होते हैं भाभी। सारांश जवाब दे ही रहा था कि मेरा फ़ोन बज उठा। पतिदेव का फ़ोन था, स्टेशन से निकल चुके थे और कुछ मिनट में बंगले के आगे पहुंचने वाले थे। मैं खुद को आखिरी बार दर्पण के आगे जांचकर दरवाजे की तरफ भागी। उस समय एहसास हुआ कि सारांश तो वहीं बैठा है। उसने इशारा किया, उसकी फिक्र न करने को कहा और बाय कहने के लिए हाथ हिलाया, जैसे हाय किया था। मैं भी मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ घूम गई, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी सवाल घूम रहा था कि प्रेम क्रिया के वो बाकी दो पार्ट कौन से थे जो सारांश मुझे पढ़ाना चाहता था।